नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 102 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी। संस्कृत गांव की तर्ज पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मॉडल सहकारिता गांव विकसित किए जाएंगे। उत्तराखंड कैंप परियोजना संचालन समिति ने वार्षिक योजना के लिए 339 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। और देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय लगातार शोध कर रहा है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 102 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर जिले के उपजिला चिकित्सालय पाशपुर में चिकित्सा अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 4 करोड़ की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला 2027 के लिए पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 27 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके अलावा हर की पैड़ी से ललतारो सेतु तक गलियों का सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 9 करोड़ की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत विधानसभा क्षेत्र खानपुर में सुरक्षात्मक कार्यों के लिए पहली किस्त में 2 करोड़ 67 लाख रुपए की मंजूरी दी। प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए 25 करोड़ की स्वीकृति दी गई। वहीं चंपावत के ग्राम छानीखोट में बाढ़ सुरक्षात्मक दीवार निर्माण के लिए 2 करोड़ 30 लाख की धनराशि की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोली के गैरसैंण में रामगंगा नदी तट पर हो रहे भू कटाव एवं आवासीय भवनों के बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 2 करोड़ 74 लाख की मंजूरी दी है। उत्तरकाशी जिले के विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम हर्षिल में भवनों के सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि की मंजूरी दी गई। वहीं सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता आंदोलन के विस्तार को प्रत्येक जिले में एक एक मॉडल सहकारिता गांव स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए विभागीय अधिकारियों को विस्तृत रोडमैप तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर संस्कृत गांव की तर्ज पर प्रत्येक जिले में मॉडल सहकारिता गांव विकसित करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर रावत ने कहा कि इन गांव में सहकारी बैंक, सीएससी सेंटर एवं सहकारी बाजार की स्थापना की जाएगी। श्री रावत ने कहा कि सहकारी बाजार स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह, किसान समूह एवं ग्रामीण उत्पादकों को अपने उत्पादक के विपणन के लिए सशक्त मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना एवं सहकारिता आधारित आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करना है। श्री रावत ने कहा कि मॉडल सहकारिता गांव देश में सहकारिता के सशक्त, आत्मनिर्भर एवं समावेशी विकास का आधार बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 मार्च को प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने तैयारियों को लेकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार के 4 सालों की उपलब्धियों से जुड़े स्टॉल भी लगाए जाएंगे।
7 मार्च को माननीय गृहमंत्री भारत सरकार का विजिट यहाँ पर प्रस्तावित है और इसमें जो गृह विभाग के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से जो विभिन्न और राज्य सरकार के माध्यम से जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हमारे जनपद में, पूरे राज्य में जो चल रहे हैं, जो पिछले 4 साल में जो विभिन्न हमारी योजनाएं हैं, जो मेन अचीवमेंट्स हैं स्टेट के, उसकी एग्जीबिशन लगाई जा रही है। साथ ही जो नए कानून हैं उनकी एग्जीबिशन लगाई जा रही है और इसी क्रम में यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए सारी टीम्स मौजूद हैं। उनके डायरेक्शन से और वो पर्सनली मॉनिटर भी कर रहे हैं और उनका आगमन भी प्रस्तावित है।
वहीं प्रदेश भर में कल होली का पूजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने होली का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की है। सुबह से ही महिलाएं थाली में रोली, चावल, फूल और गुड़ लेकर होलिका स्थान पर पहुंची और होलिका पूजन किया। इसके बाद रात को जयकारों संग होलिका का दहन किया गया।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में देहरादून में कैंपा परियोजना संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन संरक्षण, मृदा जल संरक्षण, मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम एवं वनाग्नि प्रबंधन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वार्षिक योजना के लिए 339 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई। वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण में गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में देहरादून और हल्द्वानी रेंज स्तर पर वन कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही वनाग्नि सुरक्षा एवं वन पंचायतों को सहयोग वनाग्नि सुरक्षा के लिए 12 करोड़ रूपये का अनुमोदन किया गया है। मृदा जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत जलधारों के उपचार के लिए 19 करोड़ 5 लाख रूपये की धनराशि का अनुमोदन किया गया है। देश को दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय दलहन के अधिक उपज देने वाली रोग रोधी प्रजातियों के विकास के लिए लगातार शोध कर रहा है। गत 3 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय विभिन्न दलहनों की 13 से अधिक उपज देने वाली उन्नत नवीन प्रजातियों का विकास कर चुका है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान ने बताया कि विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापक दलहन की उच्च गुणवत्ता युक्त प्रजाति के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि देश दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके।
खासतौर से पद्मनगर विश्वविद्यालय का ध्यान अब पल्सेस में दलहन में ज्यादा है और उसमें जो हमारे विद्यार्थी हैं ऐसी वैरायटी को डेवलप करना चाहते हैं कि जिससे उसकी पैदावार बढ़ेगी और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों के द्वारा जैसे आपस में क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है, कई बार क्या होता है कि जो फिजिकली भी किया जाता है, एक नेचुरल होता है जिसमें जो कीट है उनकी वजह से होता है। तो अच्छी वैरायटी आपने देखनी है और एक कंट्रोल आपने एक्सपेरिमेंट लगाना है तो उसके लिए हाथों से उसका जो परागण किया जाता है।
आज विश्व श्रवण दिवस है। ये दिन हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय समुदायों से कक्षाओं तक सभी बच्चों के लिए श्रवण देखभाल रखी गई है। हल्द्वानी स्थित सोबन सिंह जिना राजकीय 20 चिकित्सालय की कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कविता लोहनी ने बताया है कि वर्तमान में बच्चों में श्रवण संबंधी समस्याएं तेजी से सामने आ रही है। इसका एक कारण ब्लूटूथ डिवाइस या ईयरफोन का अधिक इस्तेमाल शामिल है जिससे सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा है कि समय पर जांच और उपचार से इन समस्याओं से बचा जा सकता है और अभिभावकों को बच्चों की श्रवण से जुड़ी शिकायतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
अक्सर हमें लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा, तो उसके बहुत सारे कारण कि जो मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन चीज है बैस। बैस एक नॉर्मल चीज है जिसे हम कॉमन भाषा में मेल कहते हैं। जिन बच्चों में कान के वैक्स की समस्या से परेशान है उनका वह अस्पताल में डॉक्टर्स द्वारा निकलवा दिया जाता है। दूसरा जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं वो होता है कान के पंडे की सूजन या जिसे हम कहते हैं एक्मोटोट्राइटिस दे। और जनरली वो उन बच्चों में देखा जाता है जिनमें खांसी जुकाम ज्यादा लगा रहता है या जो बॉटल फीडर्स होते हैं। यदि बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें अस्पताल लाएं, हम उन्हें देखेंगे।
और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। ईरान युद्ध की खबरों को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। इस खबर के शीर्षक में हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है युद्ध में फंसे भारतीय आज से वापस भारत लेकर आए जाएंगे। इसी खबर पर अमर उजाला लिखता है खेमनेई की मौत के विरोध में कश्मीर में दूसरे दिन भी प्रदर्शन रहा। लखनऊ में घरों पर काले झंडे देखने को मिले। आंध्र में कैंडल मार्च निकाला गया। उत्तराखंड में बनेंगे 10 नए ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर। अमर उजाला इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है 19 करोड़ का बजट मंजूर। प्रदेश में कैंपा परियोजना संचालन समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। चारधाम यात्रा की खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है तीर्थ यात्रा में डॉक्टर और कर्मचारियों का होगा अलग कैडर, अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा। और देहरादून में मतदाता सूची का मेगा ऑडिट, सुस्त बूथों पर सख्ती। दैनिक जागरण इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को युद्ध स्तर पर लाने के निर्देश। जिले में 66.62% मैपिंग हुई पूरी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 102 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। संस्कृत गांव की तर्ज पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मॉडल सहकारिता गांव विकसित किए जाएंगे। उत्तराखंड कैंपा परियोजना संचालन समिति ने वार्षिक परियोजना के लिए 339 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। और देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय लगातार शोध कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।